તારીખ 2/9/1988 પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 422 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 336.
चाहते हुए भी विकल्प चालू रह जाता है, ये प्रश्नकार का अभिप्राय है। उत्तर देते हैं, विकल्प तुझे लगे नहीं है, तू विकल्पों को लगा है। विकल्प और आत्मा अलग अलग बात है। बताते हैं, तेरी आत्मा को विकल्प नहीं लगे, लेकिन तू स्वयं ही विकल्पों को लगा है। मैंने चाहता है, मैंने विकल्प में तुझे कुछ विकल्प ठीक लगता है, कुछ विकल्प तुझे दुखमय लगते हैं, कुछ विचार कुछ विकल्प तुझे सुखरूप लगते हैं। विकल्प में प्रीति है, विकल्प में प्रेम है, राग में रुचि है, ये विकल्प कभी छूटने वाले नहीं। उत्तर में ये बात भी अनर्पित रूप से आई जाती है कि विकल्प की चिंता से विकल्प नहीं छूटता। ये विकल्प मुझे क्यों हो रहे हैं, विकल्प छूट जाए तो ठीक है, विकल्प चालू ही चालू रहता है, विकल्प कैसे बंद हो, ऐसी चिंता से भी नहीं छूटता, विकल्प छूटता नहीं है। मूल में तो उत्तर में यह बात है कि विकल्पों को तू लगा है, चौंटा है। मैंने अभी तुझे विकल्प में अशांति का जो अनुभव होना चाहिए, दुख लगना चाहिए, विकल्प में दुख लगता नहीं। दुख लगे जहाँ भी जीव को दुख लगे और जीव वहाँ से हटने का प्रयास नहीं करे, ऐसा नहीं बनता है। जीव के स्वभाव में है कि जहाँ भी जीव को दुख लगे वहाँ वो रहना नहीं चाहता, वहाँ से वो अवश्य हटना चाहता है। ये सुना है, सुनकर के सम्मत किया है कि विकल्प छोड़कर निर्विकल्प निराकुर शांत आत्मा की सुख शांति की दशा में आना चाहिए। यही मोक्ष मार्ग है, यही आत्मा का हित का मार्ग है, ऐसा सुना है। इसलिए ऐसे विचार चले या ऐसी इच्छा भावना हो जाए कि विकल्प छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी विकल्प नहीं छूटता, तो आरोप लगाता है विकल्प पर। प्रश्न में आरोप लगाता है विकल्प पर कि विकल्प मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं तो विकल्प को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन विकल्प मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ऐसी बात नहीं है, जरा अंतर अवलोकन करके देख तो पता चलेगा कि विकल्प तेरा पीछा छोड़ता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तू खुद ही विकल्प को ठीक मानकर बहुत सी जगह प्रवर्तन करता है, तो विकल्प कैसे पीछा छोड़ेगा, तू ही उसको पकड़ के रखता है। बराबर, यही बात है। ये सही परिस्थिति बताई है कि तुम विकल्प को लगा है, नहीं लगा है, तुम हट जाना, मैंने तुम विकल्प में रुचि मत रख, बराबर विकल्प उत्पन्न हुए होवे और वहाँ से अंतर में प्रयास होवे, पुरुषार्थ होवे, वहाँ से हटने का ये उपदेश है, तुम हट जा। मैंने सहज रूप से विकल्प की अशांति से हटने का और ज्ञान स्वभाव प्रति जाने का, ठहरने का सहज प्रयास होए, वो हटने की बात है। ऐसे हटने का होता है, दूसरी तरह हटने का नहीं होता, नहीं होता। विकल्प की रुचि है तो नहीं हटता, विकल्प की रुचि वाले विकल्प से हट सकते नहीं, नहीं बात, क्योंकि उसमें रुचिता है, उस भाव होता है तो आज उसको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, और जहाँ तक अच्छा लगता है वहाँ तक वैसे भाव की उत्पत्ति सहज रूप से चालू रहती है, रहती
है। तुम तो विकल्प में भूख लगना चाहिए,
असल में तो मूल में तो प्रथम से बात किया है,
नहीं
प्रथम से ही विकल्प में दुख लगना चाहिए, ये बात है। कषाय के विकल्प में भी पट्टी जैसा दुख लगना नहीं चाहिए, और पट्टी जैसा दुख लगना चाहिए ये वास्तविकता है, इस भूमिका की
बराबर
वास्तविकता है, वहाँ दुख है ही है, इसलिए लगना चाहिए, नहीं है और कोई कल्पना बनानी है कि यहाँ पट्टी है हमें ऐसा दुख लगना चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं है, वास्तव में ऐसा है, तो जैसा है ऐसा नहीं लगता, तो इसका मतलब कि ज्ञान में भी भ्रम है, ज्ञान का स्वभाव तो दर्पणवत है, जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब उसमें आवे, आदि जैसे दर्पण में होता है वैसा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसका ये सबूत हुआ कि ज्ञान में कुछ विभ्रम है, जो चीज आकुलता रूप है, दुख रूप है, वो दुख रूप नहीं लगती है और ठीक लगती है, अच्छी लगती है, सुख रूप लगती है, ऐसा ज्ञान विपरीत चलता है। जो नास्ति और दुख के स्थूल विषय में विपरीत चलता है वो ज्ञान सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वभाव को कैसे ग्रहण करेगा, अये विपरीत ऐसा जो सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वभाव उसको कैसे ग्रहण करेगा, उसको ग्रहण कर पाएगा। तुम हट जा, मैंने तेरा अस्तित्व जो विकल्प में रखा हुआ है, ये विकल्प मुझे होता है, मेरे में होता है, मैं उसको करता हूँ, ऐसा जो तुझे हो रहा है, ये वजन तेरा छूट जाना चाहिए। विकल्प कोई और चीज है और ज्ञान स्वभावी आत्मा में कुछ और चीज हूँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं हूँ, विकल्प सो मैं नहीं हूँ, ऐसा अपने का जो प्रकार है उसमें यही भाव है, ऐसे उस भाव को कह सकते हैं, इसी प्रकार का ये भाव है।
तत्व अलग है,
हाँ तत्व अलग है, विजातीय तत्व है, आत्मा ज्ञान स्वभाव इससे विकल्प है, वो तो विजातीय तत्व है, विरुद्ध जाति का तत्व है, और स्वयं की मौजूदगी, स्वयं का अस्तित्व विकल्प में नहीं है, अपने ज्ञान स्वभाव में है, मूल में तो ध्रुव ज्ञान स्वभाव में ही अपना अस्तित्व है, लेकिन ज्ञान से उसको ग्रहण किया जाता है। तुम हट जाना, विकल्पों में रंच मात्र सुख और शांति
नहीं है।
किसी भी प्रकार के विकल्प में या किसी विकल्पांश में, विकल्प के अंश में भी रंच मात्र सुख और शांति नहीं है। ये तो दुखमय है, स्वयं दुखमय है, एकांत दुखमय है, कहीं भी उसमें सुख शांति नहीं है। और अंतर में पूर्ण सुख एवं समाधान है। अंतर में आत्मा में, अंतर में मैंने आत्मा के मूल स्वरूप में, अंतर स्वभाव में, अंदर में, गुजरात में चलिए, अंदर में मैंने स्वभाव में पूर्ण सुख है और पूर्ण समाधान है। अंदर में आत्मा में पूरा समाधान, सर्वांग समाधान का भंडार आत्मा है। जब भी परिणाम में असमाधान हुए और स्वभाव के समीप जाने का प्रयास होते ही असमाधान टिक सकता नहीं, रह सकता
नहीं।
इस विषय में चैलेंज कर सकते हैं कि जगत के किसी भी प्रकार के समस्या और असमाधान का प्रश्न सामने आवे और आत्मा के स्वभाव के समीप के भाव में उसका असमाधान नहीं होवे, उसका समाधान नहीं होवे, शांति नहीं होवे, ऐसा नहीं कर सकता। लाइए कोई भी असमाधान का प्रकार, ऐसा असमाधान होवे तो क्या करें, ऐसा आत्मा सर्वांग समाधान का डर है। विकल्पों में रंच मात्र सुख और शांति नहीं है, ये कहने मात्र नहीं है। विकल्प में रंच मात्र सुख और शांति नहीं है, ये सिर्फ कहने मात्र
नहीं है।
वास्तव में ये एक अनुभव की चीज है। सुख और शांति ये अनुभव की चीज है। ये अनुभव में ऐसी बात आवे तो जीव हटे बिना
सिर्फ आत्मा का ही विकल्प करते हैं।
आत्मा का हो या अनात्मा का हो है दुख रूप। विकल्प आत्मा का हो या अनात्मा का हो स्वयं ही दुख रूप है।
विकल्प स्वयं ही
और विकल्प का जो रस है ही विकल्प लंबाने की मूल जड़ है। विकल्प रस और विकल्प मैंने राग, इसमें राग मुख्य है। तो राग रस से तन्मय, राग रस से रंजित हुआ, रंजायमान हुआ, जिस ज्ञान को राग का रंग चढ़ गया हो,
राग का रंग चढ़ गया,
उसको फिर विकल्प में राग में दुख लगता
नहीं, वहां जड़ता
है। यही हालत हो रही है। वहां तक विकल्प छूटने के कोई अवकाश नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई नजदीक नजदीक पड़ा नहीं है कि विकल्प कुछ नजदीक के काल में छूट सके, ऐसी बात नहीं है।
कभी छूटेगा
तो रस में पड़ा है। विकल्प रस में जो रंजायमान है और विकल्प रस से, राग रस से जिसकी मति मैली हुई है, जिसका ज्ञान दूषित हुआ है, मैला हुआ है, वो तो निराकुल निर्विकल्प स्वच्छ एकला ज्ञान मात्र स्वरूप को अनुभव कर सकता
नहीं,
उसको कभी शांति नहीं मिलती, कभी सुख नहीं मिलता। ये तो आत्मिक सुख शांति का मार्ग है, उपाय है, इलाज है, रास्ता है। कोई भी जीव कहीं से आओ, यहाँ तो जीव एक जाति के होते हैं, कहीं भी इसके लिए कोई जाति का भेद गिन करके कोई उस पर पाबंदी लगा सकते
नहीं।
कोई भी जीव हो, कहीं से भी आया हो
जीव,
जीव मात्र एक जाति के हैं, संप्रदाय का इसमें कुछ लेना देना
नहीं है,
नहीं है। स्वभाव सुख शांति से भरा है, सुख शांति अनुभव करना ही इनका धर्म है। धर्म क्या चीज है?
शांति करना,
स्वयं की सुख शांति का अनुभव करना, यही इसका धर्म है। और अशांति का अनुभव करना, ये इसका अधर्म है।
धर्म
इसका धर्म नहीं, लेकिन ये इसका
धर्म है,
धर्म है। विकल्प कहो या अधर्म कहो, दोनों एक बात है। राग कहो, अधर्म है, वितरागता होता तो धर्म है, ऐसी बात है। 422 वचनामृत है। अनंत ज्ञानियों नो, अनंत ज्ञानी के एक मार्ग होता है, चाहे अनंत काल पहले हुए हो चाहे अनंत काल बाद में हो,
एक ही मार्ग,
एक ही मार्ग, दूसरा मार्ग होता
नहीं।
प्रश्न चला है कि विकल्प हमारा पीछा नहीं छोड़ता, तो कहते हैं कि तू विकल्प का पीछा नहीं छोड़ता है, ऐसे तो तू अनंत बलवान शक्तिवान है
आजी,
और तेरे आगे विकल्प कुछ नहीं है, एक बोल में लिया है
लिया।
जैसे जंगल में सिंह सोया हुआ है तो मक्खी मच्छर इस पर बैठते हैं, आगे छोटे मोटे जीव आकर बैठते हैं, लेकिन वो जगते ही मक्खी मच्छर क्या, इससे बड़े बड़े जो कोई प्राणी है वो भी यहाँ से भग जाते हैं, तो मार डालेगा, खा जाएगा हमको। वैसे तू तो अनंत शक्तिमान है, लेकिन तू सोया हुआ है तो ये विकल्प तेरे पर सवार होते हैं, कहाँ तेरी ताकत और कहाँ एक समय के विकल्प की राग की ताकत, कुछ नहीं है तेरे आगे। और तू घबरा कर ये कहता है कि विकल्प मेरा पीछा नहीं, क्या करूं, विकल्प मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, विकल्प मुझे लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, विकल्प छोड़ता ही नहीं, करूं मैं क्या। ये बात सही नहीं है, तुझे प्रेम है, तुझे रुचि है, तुझे रस है विकल्प का, तो विकल्प छूटने वाला
नहीं है।
और विकल्प छूटने वाला नहीं है, इसका मतलब ये है कि दुख छूटने वाला नहीं है तेरे, तुझे सुख होने वाला
नहीं है,
नहीं है। इसलिए बताते हैं कि विकल्पों में रंच मात्र सुख और शांति नहीं है, रंच मात्र नहीं है, नहीं लगती है तो जहां तक नहीं लगे वहां तक उसका तो अवलोकन कर, तो ये कहेंगे प्रश्न कर सकते हैं कि विकल्प में दुख लगता नहीं है तो क्या करें, दुख लगे तो जीव हटता है, ये बात तो ठीक है, जहाँ भी जीव को दुख लगता है दुख वहाँ से जीव यहाँ से हटने का प्रयास करेगा, लेकिन दुख ही नहीं लगे तो वहाँ से कैसे हटने का प्रयास सहज होगा, तो लगता नहीं है। तो कितने प्रकार के विकल्प में तो अभिप्राय बना रखा है, स्थूल रूप से कि ये विकल्प अच्छे हैं, अशुभ विकल्प है उसमें दुख ज्यादा है, दोष ज्यादा है, लेकिन शुभ विकल्प तो अच्छे हैं, उसमें भी व्रत नियम संयम के विकल्प होते हैं, वो तो अच्छे हैं कि नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत स्वरूप, इनके जो विकल्प है उनका जो स्मरण है वो विकल्प तो अच्छे हैं कि नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, विकल्पों में कोई अपवाद नहीं है, इसमें
सब विकल्प,
सभी विकल्प, एक भी जाति का विकल्प जो है इसका अपवाद इसमें नहीं है, सभी विकल्पों में रंज मात्र सुख और शांति नहीं है, भले ऊपर से मदकषाय वाले विकल्प में शांति दिखे, फिर भी तात्विक रूप से देखे तो इसमें सुख शांति
नहीं
है ही नहीं, ये तत्व का विषय है, ऊपर ऊपर से देखने का विषय
नहीं है,
नहीं है। इसका मूल तत्व क्या है तो उसको अनुभव करते हुए उसमें तो दुख ही दुख है, कहीं भी सुख नहीं है। विकल्प में रंश मात्र सुख और शांति नहीं है, जहां तक ऐसा विश्वास अनुभवांश से ऐसा विश्वास पैदा नहीं हो, अनुभव अंश से ऐसा विश्वास पैदा नहीं
हो
वहां तक यहाँ से हटने का कोई कार्य होने वाला
नहीं है,
कोई प्रयास नहीं होगा, कोई कोशिश नहीं बनेगी। और साथ ही बतलाते हैं कि अंतर में पूर्ण सुख एवं समाधान है। बहुत से मुमुक्षुओं ऐसे प्रश्न करते हैं कि अंतर में पूर्ण सुख एवं समाधान है, लेकिन जहाँ तक दिखने में नहीं आवे वहाँ तक वहाँ जाने का कोई आकर्षण पैदा होता
नहीं,
ये बात भी सही है कि जहाँ तक नहीं दिखे दिखेगा वहाँ तक आकर्षण सही रूप में
नहीं आएगा,
उत्पन्न ही नहीं होगा, ये बिल्कुल स्वभावगत है। तो इसका कोई उपाय है क्या, इसका कोई रास्ता है कि दोनों भाव राग और ज्ञान दोनों प्रकार के भाव जीव को हर वक्त अनुभव गोचर हो ही रहा है, हर समय अनुभव गोचर हो ही रहा है, तय रहता है। राग और ज्ञान दोनों विजातीय है, एक में दुख है एक में दुख नहीं है लेकिन सुख है। अब दुख है इसमें दुख अनुभव नहीं आता, और सुख है इसमें सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, विपर्यास है, दोनों जगह काम कर रहा है। तो जहां तक ऐसा नहीं अनुभव में आवे वहां तक उसको देखते रहे, देखते रहे, मैंने उसका अवलोकन करते रहे, जो जिस अनुभवी महापुरुष ने धर्मात्मा ने ये बात अपने अनुभव से कही है, अनुभव से सिद्ध होकर कही है, तो मेरी गलती है जहां तक मुझे ऐसा नहीं दिखता है, ये मेरी गलती है। और मेरी गलती कैसे होती है उसको अंदर में खोजे, और जहां तक जैसा कहा वैसा नहीं दिखने में आवे वहां तक उसका अवलोकन करते रहे। तो यहाँ से ये जो विपर्यास है वो पहले मंद होकर के छूटने का कार्य बन पाएगा।
बरोबर,
ये जीव को प्रयोजन का, जीव के लिए प्रयोजन का विषय है दुख और सुख। संसार में सभी प्राणियों का, सिर्फ मनुष्यों का नहीं लेकिन सभी प्राणियों का ये प्रयोजन है या समस्या है कि दुख मिटे और सुख होवे।
समस्या है,
हाथी भी यही चाहता है, और एक चींटी, कीड़ी कहते हैं गुजराती, चींटी वो भी सुख के लिए अपने घर से दर से बाहर निकलती है सुख के लिए। जहाँ भी सुख माना है जीव अपनी मान्यता के अनुकूल प्रवृत्ति करता है, लेकिन जहाँ सुख माना है तो वही इसका प्रयोजन है, और उसके पीछे इसका प्रयास और पुरुषार्थ लगा रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि तेरे अंतर में पूर्ण सुख एवं समाधान शांति है, मेरा कोई सुख आपुलता रहे, सुख ये तेरा स्वभाव है और तेरा सुख न राग में है न विकल्प में है और न राग के कोई विषयभूत जड़ पदार्थ में है। कैसे भी जड़ पदार्थ हो चेतना रहे उसमें सुख स्वभाव नहीं, सुख गुण नहीं, सुख की कोई अवस्था नहीं, न सुख दे फिर सुख देने का कोई सामर्थ्य हो गए ये तो विचार करने का भी नहीं है। यहाँ इतना लेना कि विकल्पों में रंच मात्र सुख और शांति नहीं है, ये बात बार बार अवलोकन से है जहां तक कहा है ऐसा मालूम नहीं पड़े वहां तक देखते रहना, वहां तक अवलोकन करते रहना। पहले आत्म स्वरूप की प्रतीति होती है वा क्या, अब कहते हैं कि मुमुक्षु जीव को पहले आत्म स्वरूप की प्रतीति होती है, भेद ज्ञान होता है, पश्चात विकल्प टूटते हैं और निर्विकल्प स्वानुभूति होती है। ये बात इसलिए बताई कि जीव को ऐसा विचार आता है कि विकल्प छूट जाए तो निर्विकल्प अनुभूति की दशा में प्रकट हो जाए, लेकिन ऐसे कोई सीधी निर्विकल्प अनुभूति की दशा आती है ऐसा किसी को बन सकता
नहीं
नहीं है
बराबर।
तो इसके पहले क्या क्या होता है यही बात यहाँ रखी है कि पहले आत्मस्वरूप की प्रतीति होती है, पहचान पूर्वक विश्वास आवे हैं उसको यहाँ प्रतीति शब्द से कही है। आत्मस्वरूप का भावभाषण होकर पहचान होकर विश्वास आए कि अनंत ज्ञान और अनंत सुख मेरे में है और विकल्प मात्र में दुख है, विकल्प के विषयभूत सभी विश्व के पदार्थ या जिसको हम अनुकूलता कहते हैं ऐसे सभी प्रकार के अनुकूल संजोग उसमें से विश्वास चला जाता है।
बराबर
जो अनादि का इसमें विश्वास है कि मेरा सुख यहाँ है ये विश्वास है वो टूटता है, इस प्रकार का विश्वास टूटता है। जैसे कि घनिष्ठ मित्राचारी हुए और विश्वास टूट जाए तो ये कहेंगे कि भाई तुमको ये खाना खिलाकर उसमें जहर मिलाकर मारने के लिए मित्रता में हो गया है सब, जिनका विश्वास हमको अभी हो गया इस बात पर तो कितना है विश्वास हो जाएगा कि मेरे लिए तो ये जहर और मृत्यु का दूत देखने में आता है तो ही नजर से देखेगा
मित्रता
कहाँ। वैसे राग में जहर है, पहले राग में और राग के विषय में तो उसको रुचि प्रेम प्रीति होती थी तो उसका विश्वास था कि यहाँ से मुझे सुख मिलता है मिल रहा है मिलता है, यहाँ ही उसका विश्वास पहले बदलता है। मेरे लिए वहाँ परिणाम राग समेत परिणाम को परिणाम से जाना, इसका रस लेना राग रस बढ़ाना यही मेरी सुख शांति का खून करने की बात है। मेरा जो प्राण है ज्ञान और आनंद सुख और शांति ऐसा जो आत्मा का प्राण है उस प्राण का घात होना यही राग का कार्य है, यही उसको विश्वास हो जाता है। विश्वास परस्पर विरुद्ध विषय में हो सकता नहीं रह सकता
नहीं।
राग और राघव राग के विषय में कहीं भी सुख और कहीं भी शांति
नहीं है,
नहीं है। ये पहले विश्वास टूटता है, पहले विकल्प नहीं छूटता, कहने का ये अभिप्राय है कि पहले कभी विकल्प
नहीं
छूटता, पहले तो विश्वास मिटता है और विश्वास मिटने के बाद भेद ज्ञान की प्रक्रिया चालू होती है। भेद ज्ञान की क्रिया है तो अंतरंग क्रिया है, बाह्य क्रिया नहीं है, लेकिन
अंतरंग क्रिया,
ये अंतरंग क्रिया है, वो क्रिया पहले चालू होती है भेद ज्ञान की, और भेद ज्ञान की क्रिया चालू होने के बाद इसके फल स्वरूप पश्चात विकल्प टूटते हैं और निर्विकल्प स्वानुभूति की दशा उत्पन्न
होती है। वाह वाह वाह।
जिनेश्वर के मार्ग में ये निर्विकल्प स्वानुभूति का दूसरा नाम जैन परमेश्वर ने जिन शासन कहा है, द्रव्य भाव जिन शासन, बहुत महत्ता दी है। चारों गति में जीव कहीं भी हो, भले पशु की पर्याय में हो, पशु की दशा में हो, आत्मा पशु नहीं है,
तो
इनकी वैभाविक दशा है। आत्मा कोई पशु
नहीं
है, आत्मा कोई हाथी चींटी नहीं है, मनुष्य नहीं है, देव नहीं है, नारकी
नहीं है,
आत्मा तो आत्मा है, और आत्मा को आत्मा की नजर से देखो, इनकी वैभाविक पर्याय की नजर से
नहीं देखो।
तो किसी को चार गति में कहीं भी स्वानुभूति होती है, किस तरह होती है कि आत्मा में अनंत सुख है, अनंत सुख का भंडार भरा भंडार मेरा आत्म स्वरूप ही है, ऐसा विश्वास आता है और भेद ज्ञान होकर के स्वानुभूति होती है। उस स्वानुभूति के काल में उसी वक्त उसी क्षण में जीव की अवस्था में अनंत संसार होने की योग्यता है, उसका नाश हो जाता है।
बराबर
उसको कहते हैं कि इसका अनंत जन्म मरण मिट गया, अब कुछ रह गए दो चार छह, ये मामूली बात है, अनंत के आगे ये मामूली बात है। एक क्षण में जिस स्वानुभूति की ताकत ऐसी है कि जिसके प्रथम क्षण के उपस्थिति में ही अनंत जन्म मरण का नाश होवे, अनंतता टूट जावे, ऐसी परिस्थिति वास्तविक होने से इस अनुभूति की बहुत महत्ता ग्रंथ ग्रंथ में शास्त्रकारों ने दर्शाई है, अनेक ग्रंथ में ये बात प्रसिद्ध की है, और भगवान कुंकुंड आचार्य देव ने 15 गाथा में एक हाथ द्रव्य और भाव से समस्त जीन शासनम सर्वम मागधी में ऐसा लिया, जीन शासनम सर्वम, समस्त जीन शासन है, द्रव्य से और भाव से जो भी जीन शासन है यही स्वानुभूति में समाविष्ट है। 12 अंक का सार यही है।
वाह वाह वाह। 12 अंक का सार
यही है, जिसने स्वानुभूति की उसने 12 अंग पढ़ लिया और उसने व्रत कर लिया, संयम कर लिया, उसने जप कर लिया, उसने तप कर लिया, उसने सब कुछ
लिया
कर लिया, सब हो गया इनके लिए, कोई चीज बाकी
नहीं
रही। द्रव्य और भाव से जिन शासन में जो भी चीज है यही अनुभूति में समाविष्ट है। इसलिए प्रश्न इसलिए उठाया है, यहाँ पर जो प्रश्न उठाया है कि विकल्प हमारा पीछा नहीं छोड़ते, तो हमें तो चाहिए निर्विकल्प दशा, ऐसे निर्विकल्प स्वानुभूति में जन्म मरण का अंत तो होता है, तो हमारा ये विकल्प पीछा छोड़े तो निर्विकल्प होवे ना हम।
प्रश्न है,
जी प्रश्न यहाँ से उठाया
हाँ जी,
कहते हैं कि बात तो सही है, विकल्प नहीं होना ये भावना ठीक है, लेकिन कार्य पद्धति भी सही होनी चाहिए। ऐसा विचार मात्र से, इच्छा मात्र से कोई काम हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। इसलिए दूसरे पैराग्राफ में ये बात लिया कि पहले आत्मस्वरूप की प्रतीति होती है, पहले आत्मस्वभाव की पहचान होती है और पहचान से विश्वास आता है कि सुख मेरे में है, और आत्मस्वरूप की पहचान होते होते होने से विकल्प में दुख है, राग में दुख है, ऐसा सही रूप से मालूम पड़ता है और उसमें जो विश्वास है वो विश्वास टूट जाता है। जीव राग और राग के विषय में सुखानुभव करता है, वो अकेला सुखानुभव करता है सो बात नहीं है, परंतु विश्वास समेत अनुभव करता है कि उसमें सुख है, ऐसा विश्वास भी है और फिर अनुभव है। इसलिए वहां तीव्र रस एकत्व बुद्धि और तीव्र रस हुए बिना रहता नहीं है। पहचान से ये विश्वास टूटता है, तो विश्वास से प्रतिकूल विकल्प राग भी हो गया तो ये विश्वास उसका निषेध करके धक्का मारेगा, विश्वास उल्टा और विकल्प उल्टा। इससे तो विश्वास है वो बलवान है, विकल्प इतना बलवान
नहीं है, निषेध करेगा
विश्वास से, विश्वास से निषेध
आएगा।
ये अंतरंग अंतर प्रक्रिया है, ये इसकी अंतर प्रक्रिया है वेद ज्ञान की। राग तो ज्ञानी को भी होता है, ज्ञानी नहीं हुए इसके पहले मोक्ष को हुए ये तो हुए ही हुए, ज्ञानी को भी होता है, लेकिन क्या अंतर है राग होने होने में, क्या अंतर है कि एक को विश्वास है ऐसा कि राग में सुख है, और जहां से पहचान हुई या ज्ञान दशा हुई वहां से अविश्वास है कि इसमें सुख नहीं है, ये दुख का दुख रूप है, प्रत्यक्ष दुख रूप है, प्रत्यक्ष दुख रूप अनुभव आ रहा है, इसमें दुख ही दुख है, सुख तो मेरे आत्मा में ही है। तो इससे होगा तो सही लेकिन उसका निषेध अंतर्क्रिया में आएगा तो ये राग आगे जाकर के खत्म हो जाएगा, और इसके बिना इसका नाश होने का दूसरा कोई मार्ग
नहीं है,
कोई राग नहीं है। इसलिए कहा कि पहले प्रतीति होती है, प्रतीति पूर्व वेद ज्ञान चालू होता है और बाद में विकल्प टूट जाते हैं। निर्विकल्प स्वयं का आत्मस्वरूप है, उस निर्विकल्प स्वरूप में परिणाम तन्मय होते ही ये तन्मय होने वाले परिणाम निर्विकल्प स्वानुभूति रूप कहे जाते हैं। ऐसा इस विषय का जो सारांश है
आजीवन
का यही है कि तुम पहचान करो और पहचान करके अपना स्वानुभव को प्रकट करो, यही प्रेरणा है। वेद विज्ञान के विषय में प्रश्न ही नहीं आता है, इस विषय को थोड़ा प्रयास का प्रयोग का विषय है,
प्रयोग का
प्रयत्न के काल में ये चालू होता है।
हाँ जी,
कैसे विज्ञान हो, कहाँ से हो, विज्ञान कहाँ से चालू करे,
कहाँ से चालू करे,
तो राग और ज्ञान दोनों भिन्न है। यहाँ से विज्ञान को चालू करना
चाहिए।
दूसरा कि मैं मेरे ज्ञान में ही हूँ, इसलिए मेरी व्याप्ति मैंने व्यापक पढ़ा
है।
मेरा व्यापक पढ़ा मेरे ज्ञान में है, मेरे ज्ञान स्वभाव में है। इससे आगे जा करके राग और राग के विषयभूत देहादि पदार्थ है, उसमें मेरी व्याप्ति
नहीं है।
ये तो बात रही कथन की।
हाँ जी,
लेकिन प्रवर्तन में इसको लागू करें, अगर ये समझ में आता है तो इस समझ को प्रवर्तन में लागू करें, तब विज्ञान की प्रक्रिया चालू होती है, विज्ञान का कोई प्रयास चालू होता है। उस विज्ञान के प्रयास जीव की जो शक्ति है, वो शक्ति प्रकट होने का, प्रकट करने का ये चावी जो कुछ है मूल में, तो ये विज्ञान के प्रवर्तन है। विज्ञान की प्रवृत्ति ही इसकी चावी है, जीव की शक्ति को प्रकट करने के लिए। चारों गतियों में ये विज्ञान हो सकता है, और चारों गतियों में जो उदय है वो पूर्व कर्म के हिसाब से जो गति में जीव आया उसी के अनुकूल सभी प्रकार के उदय हैं। नारकी में बहुत दुख का, प्रतिकूलता का उदय है, देवलोक में ऐसे नहीं है, बहुत अनुकूलता का है। जैसे वहाँ बचपन नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, रोग अवस्था नहीं है, और दूसरी प्रतिकूलताएं जो मनुष्य में होती है, ऐसे कोई पाप के योग वाली कोई भी परिस्थिति वहाँ बाहर में
नहीं है।
मार्के में देखो तो कोई अनुकूलता का अंश नहीं दिखता है वहाँ। बहुत से रोग है, भयंकर रोग है, और कहीं खाने का, रहने का, पीने का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत दुर्गंध है वहाँ, कई सुगंध ही सुगंध है वहाँ, तो देव के शरीर में से भी सुगंध आती है, हवाएं सुगंधित रहती हैं वहाँ, कोई सुगंधित पदार्थ फूल अत्तर वगैरह लगाना नहीं पड़ता। वैसे ही रहता है वहाँ, और यहाँ कोई दुर्गंध है वो लानी नहीं पड़ती।
दुर्गंध
किशोड़ विष्टा, मैंने ये पास परु होता है सेप्टिक, इनके समुद्र है वहाँ सब, इनके समुद्र है, नदियाँ है, समुद्र है, वैतरणी नदी बोलते हैं, नदी है, समुद्र है, और अंधेरा ही अंधेरा है वहाँ, उजाला ही उजाला है, अंधेरा होता ही नहीं कभी वहाँ, कोई सूर्य को उगना पड़े फिर चंद्र को आना पड़े ऐसी बात नहीं है, और यहाँ कभी उजाला होता ही नहीं, बहुत अंधकार ही अंधकार, कुछ दिखे ही नहीं, और मार पड़ती रहे फिर भी दोनों जगह भेद ज्ञान हो सकता है।
वाह,
यहाँ तो वही हुए, भेद ज्ञान करना चाहे जी तो चारों गतियों में हो सकता है। और चारों गति में अनुभव हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है और अनुभव
हो सकता है,
हो सकता है। तीन तो गति संगी पंचेंद्रिय की है, तीनेंद्र गति में असंगी जीव भी है, तो संगनी को भेद ज्ञान हो सकता है, असंगनी को
नहीं होता।
संगनी मैंने मन वाला जीव, जिसको मन नहीं होता उसको भेद ज्ञान होता नहीं, इतनी मर्यादा है। तो तीव्र अनुकूलता का प्रसंग हो या तीव्र प्रतिकूलता का प्रसंग हो, जो जीव वेद ज्ञान करने के लिए उत्साहित होते हैं वो कहीं भी वेद ज्ञान कर सकता है, उसमें कोई संयोग है, वो तो इनके प्रयोग के ही साधन है। जिस प्रकार का उदय है, संयोग वियोग कुछ भी हो, ये इनके तो प्रयोग के ही साधन बनते हैं। इसलिए वेद ज्ञान कोई खास परिस्थिति पैदा होवे तब ही जीव कर सके, वरना नहीं कर सके, ऐसी बात
नहीं है।
चारों गति में किसी भी हालत में किसी भी प्रकार के द्रव क्षेत्र का भाव हो, जीव भेद ज्ञान कर सकता है, और भेद ज्ञान करने से ही वो स्वानुभूति तक पहुंच सकता है। स्वानुभूति करने के बाद भी साधक जीव धर्मात्मा भेद ज्ञान ही करता है, कहां तक कि जहां तक सिद्ध दशा उत्पन्न नहीं हुए वहां तक भेद ज्ञान करता है, दूसरा कुछ नहीं करता। प्रारंभ से लेकर अंत तक जो उपायभूत विषय है वेद ज्ञान का, उसको अच्छी तरह समझना चाहिए, और इसके समझने के लिए कोई पठन पाठन पर्याप्त नहीं है, इसके समझने के लिए इसका प्रयोग का प्रारंभ करें और फिर देखें कि हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अगर हम वेद ज्ञान का कुछ प्रयास करने को जाते हैं, तो वेद ज्ञान का प्रयास करते वक्त हमें किस प्रकार की तकलीफ महसूस होती है, या हम कितने सफल होते हैं कितने विफल होते हैं, क्यों सफल होते हैं क्यों विफल होते हैं, इस विषय का जो अंदर की जो जांच है,
अंदर की जांच
खोज है, वो प्रयोग में आने से ही होती है।
बराबर
बहुभाग तो इस प्रयास में खुद ही को मार्ग मिल जाता है, कभी किस जीव को स्वानुभवी धर्मात्मा के पास से कुछ और समझने के लिए प्रश्न अंतर से होता है, अंतर से मैंने अपने प्रयोग में जो कोई तकलीफ हुई तो उस तकलीफ को दर्शाते हैं, पूछते हैं कि यही कारण है कि समझ नहीं आती कि क्यों ऐसा होता है।
बराबर
तो अनुभवी है उसको दर्शा देते हैं कि यही कारण होता है, यही कारण हो सकता है, लेकिन ये तो जब कोई प्रयास करे और उसको तकलीफ हुए तो उसको दूर होने की बात नहीं। बहुभाग तो वेद ज्ञान करने वाले जीव को स्वयं ही मार्ग की सूझ आती है, और कहीं भी उसको तकलीफ होती है तो स्वयं ही उसको पार कर जाता है, ऐसे उनको क्षमता और योग्यता प्राप्त हो जाती है।
को आया प्रवचन में, प्रकाश का प्रवचन में अच्छा बुरा लगता है, और उसकी लिए जागृति और बहुत
अच्छा बुरा लगता है, तो चीज अच्छी बुरी है कि नहीं है वो पक्का करें।
चीज तो अच्छी बुरी है, जो है वो
जैसे बलिदाना है, बादाम है, पिस्ता है, पर नमक लगाया जाता है, क्या कहते हैं, खारी सिंह कहते हैं अपने, खारा खारा पिस्ता, खारी बादाम अच्छी लगती है। उसमें क्या चीज़ अच्छी है? नमक अच्छा है, अकेला दे तो इतना अच्छा नहीं लगने लगता, तो उसको नमक वाला बनाया, ये खारा पिस्ता खाओ बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो वैसे ही अभिप्राय लेकर बैठता है कि ये 600 रुपया किलो की चीज़ है, बहुत बढ़िया है, इसलिए कोई अच्छी चीज़ है। मैंने जिसकी कीमत पैसा ज़्यादा हो कि पैसे ही चीज़ अच्छी, ऐसा ही एक
अभिप्राय लगा दिया,
अभिप्राय बना लेता है कौन सी चीज़ अच्छी है। नमक अच्छा है तो तुम अकेला नमक खाओ, इसमें दोनों में से चीज़ कौन, दो ही तो चीज़ है, अकेला नमक खाओ, कितना खाओगे?
नहीं बात बात,
अकेला पिस्ता खाओ फीका लगेगा, कितना खाओगे? ज़्यादा खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कितना खाओ, तो भारी चीज़ है। अलग अलग तो अच्छे नहीं है, लेकिन साथ में अच्छे हैं, साथ में अच्छे हैं, ऐसे तेरी कल्पना के सिवा कुछ है
नहीं, कल्पना है
कल्पना।
वाह बराबर।
और जीव चैतन्य स्वभावी ज्ञान स्वरूपी आत्मा
हाजी,
उनके लिए कोई भी परमाणु की अवस्था अच्छी क्या और बुरी क्या? एक चैतन्य स्वभावी आत्मा जिसका धर्म सिर्फ जानने का और अपने सुख शांति का अनुभव करने का, उसके लिए जड़ पदार्थ में कोई जड़ की अवस्था, परमाणु की अवस्था अच्छी क्या और बुरी क्या? अच्छापना और बुरापने का जो अभिप्राय है वो जहाँ तक नहीं जाएगा, विश्वास टूटेगा
नहीं।
सुख दुख का जो विश्वास है, ये दुख का कारण, ये सुख का कारण, ये विश्वास टूटेगा?
विश्वास है पहला,
पहला विश्वास टूटना
चाहिए।
इसलिए पहले होता है, पहले प्रतीति होती है, प्रतीति पूर्वक वेद ज्ञान होता है और पश्चात विकल्प
होता है,
आत्मस्वरूप की प्रतीति में निर्विकल्प आत्मस्वरूप है ऐसी प्रतीति आती है। जो मैं स्वरूप से ही जब निर्विकल्प हूँ तो विकल्प मैं हूँ वो बात कहाँ तक टिकेगी? अनादि से वर्तमान तक का अनुभव यह है कि मैं विकल्प रूप हूँ, ऐसा अनुभव है देव को, ऐसा विश्वास है और ऐसा अनुभव भी है। जब ये विचार पूर्वक प्रतीति आई, पहचान आई कि मेरा आत्मस्वरूप ही निर्विकल्प है, मैं स्वयं ही निर्विकल्प हूँ, प्रतीति आई, विश्वास आया, तो मैं विकल्प रूप हूँ ये बात अनुभव में कहाँ तक टिकेगी? ये बात टिक सकती
नहीं।
अविश्वास हो जाने से मित्रता रह सकती
नहीं,
टिक सकती नहीं लंबे, थोड़ी बहुत काल तक व्यवहार चलेगा फिर ये छूट जाएगा, रहेगा ये रुचि रुचि प्रति छूट जाती है, नज़र बदल जाती है। इसलिए कहते हैं कि पहले प्रतीति आनी
चाहिए,
समय साथ तीर्थगाथा के टीका में गुरुदेव प्रवचन करते हुए कहते थे कि जिसको निर्विकल्प आत्मस्वरूप की पहचान हुई, निश्चय हुआ
वाह,
उसको निर्विकल्प स्वानुभूति होने का काल पक गया है
वाह।
काल लब्धि कहते हैं ना,
काल लब्धि,
काल पके उसको
काल
लब्धि कहते हैं,
उसका काल पक गया,
उसका काल पके उसकी काल लब्धि आ गई। क्यों ऐसा कहा? ये निर्विकल्प आत्मस्वरूप की महत्ता महिमा ऐसी आती है, मैं ऐसा निर्विकल्प हूँ, ऐसा निर्विकल्प सुख का भंडार हूँ, उसका इतना जोर से महिमा आता है कि फिर विकल्प उसका टिक सकता नहीं। निर्विकल्प मैं हूँ,
मैं हूँ,
इसके जोर में विकल्प जो है वो टिक सकता नहीं। निर्विकल्प स्वरूप मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, इसका इतना जोर चक्कर चलेगा कि मैं हूँ ऐसा विकल्प भी छूट जाएगा। ये मैं हूँ विकल्प में होता है, ये भी छूट जाएगा। दूसरा तो माने का फिर सवाल ही नहीं, लेकिन मैं हूँ ऐसा जो विकल्प, ये भी छूट जाएगा। ऐसा स्वयं के स्वरूप में अपनत्व अभेद भाव से होता है, उसको शासन कहते हैं, उसको अनुभूति कहते हैं, उसको जन्म मरण के नाश का उपाय रूप जिन मार्ग कहने में
आता है,
आता है।
वाह वाह,
यही की बात है, यही बात
है। वादिदेव श्रीमंदर भगवान।